तथा सृष्टि करता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदांतिकम्। वन्देहं श्री गुरौ श्री उत्पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो 16वां अध्याय है ये, जिसमें भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन है या विभूति, जैसे भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया, अन्य स्थानों पर भी किया भगवद गीता में कुछ कुछ स्थानों पर, तो ऐसे ही ये अध्याय है जहां भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पहले 5 श्लोकों में उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान से, पहले भगवान का गुणगान करते हैं और फिर भगवान से प्रश्न करते हैं कि कैसे आपको जाना जा सकता है, कैसे पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है और कैसे आप अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं इस भौतिक जगत में। तो फिर 6वें श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक भगवान भगवद गीता को याद कर रहे हैं, अर्जुन को याद करते हैं। तो उद्धव से कहते हैं ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था जब अर्जुन दुविधा में पड़ गया था। और फिर 9वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं, करीब 100 विभूतियों का वर्णन करते हैं भगवान इस अध्याय में। और फिर 36वें श्लोक से लेकर इस अध्याय के अंत तक 44वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि क्यों आवश्यकता है भक्ति की और क्यों आवश्यकता है मन को नियंत्रण करने की, आत्म संयमी बनने की। इसको भगवान अध्याय के अंत में समझा रहे हैं। तो उद्धव जी, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, उद्धव ने प्रश्न किया या भगवान का गुणगान कर रहे हैं जैसे अर्जुन ने किया था, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। तो यहां भी ब्रह्म परमम उद्धव गुणगान कर रहे हैं भगवान का कि आप ही परम हैं, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही संहार करते हैं और आप ही इसका पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में आप ब्रह्म हैं, आप ही परमात्मा हैं और आप ही भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि परम सत्य अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि भगवान केवल निराकार हैं वो भी गलत हैं, और जो ये कहते हैं कि भगवान केवल साकार हैं वो भी गलत हैं। भागवत सिद्धांत के अनुसार भगवान साकार और निराकार दोनों हैं, लेकिन निराकार साकार से आते हैं, ये स्थापित किया जा चुका है। तो इसीलिए साकार रूप को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निराकार रूप है ही नहीं भगवान का। ब्रह्म निराकार है जिसमें हमें आंशिक साक्षात्कार होता है। जीव के साक्षात्कार की पूर्णता है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद को प्राप्त करना। जब हमें ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं तो ब्रह्म साक्षात्कार में केवल सत रूप का या सत का अनुभव होता है। सत मतलब शाश्वतता। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में सत है चित नहीं है, चित मतलब ज्ञान नहीं है। भगवान के रूप का, भगवान की शक्तियों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के धाम का। तो इसीलिए सत केवल अनुभव कर सकते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। फिर उसके परे है परमात्मा साक्षात्कार, जहां सत के साथ साथ चित भी जुड़ जाता है, रूप का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा रूप एक आकार आ जाता है, भगवान को जानने लगते हैं, भगवान की आराधना करने लगते हैं, आराधना अर्थात भगवान पर ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन क्योंकि इस साक्षात्कार में आदान प्रदान नहीं है, सेवा नहीं है, इसीलिए आनंद नहीं। जब हम कहते हैं कि आनंद नहीं है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ब्रह्म नीरस है, परमात्मा साक्षात्कार नीरस है। नहीं, रस है, आनंद है। ब्रह्म साक्षात्कार में जो आनंद है वो इस जगत के आनंद से कई गुना ज्यादा। तैतरीय उपनिषद में जब आनंद की तुलना की जाती है तो वर्णन करते हैं कि अगर इस जगत में, इस पृथ्वी पर जो आनंद मिलता है, उस सारे आनंद को एक व्यक्ति को दे दिया जाए, जो बहुत युवा अवस्था में है, आनंद भोग सकता है, पृथ्वी का सारा आनंद दे दिया जाए, जो आनंद उसको आता है उससे 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं को आता है, उनसे 100 गुना ज्यादा इंद्र को आता है, उनसे 100 गुना ज्यादा बृहस्पति को आता है, उससे 100 गुना ज्यादा ऊंचे लोक के लोगों को आता है, उनसे 100 गुना ज्यादा ब्रह्म लोक के लोगों को आता है, उनसे 100 गुना ज्यादा ब्रह्मा जी को आता है। ये भी पृथ्वी के सारे आनंद से कई गुना आगे चले जा चुके हैं। और फिर वर्णन किया है कि जो ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड में आनंद आता है उससे भी कई गुना ज्यादा आनंद ब्रह्म में आता है, ब्रह्म साक्षात्कार। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्रह्म में आनंद नहीं, लेकिन आनंद की पूर्णता नहीं। अगर आनंद नहीं होता तो कोई क्यों प्राप्त करने का प्रयास करता, लेकिन आनंद की पूर्णता नहीं। तो क्यों नहीं है? सेवा नहीं। तो इसीलिए ये जब हम भगवान साक्षात्कार करते हैं तो उसमें सत चित और आनंद तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए यहां उद्धव कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म है। तो ब्रह्म है और परम ब्रह्म है। वैसे तो जीव भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, इस शब्द को या इस वाक्य को बहुत गलत प्रस्तुत किया जाता है, ये बताकर कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान। प्रभुपाद समझाते हैं अहम ब्रह्मास्मि ये सही है, लेकिन अहम परब्रह्मास्मि नहीं कहा गया। तो एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म है। तो यहां भगवान को परम ब्रह्म संबोधित किया गया है। फिर उद्धव मान लीजिए भगवान को उन्होंने कहा आप ही परम है सब कहा, तो भगवान ने मानो प्रश्न पूछा कि फिर लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं। जैसे इस देश में प्रधानमंत्री हैं तो सबको पता है, लोग स्वीकार करते हैं, किसी को पूछे भी प्रधानमंत्री कौन है बता देंगे, तो लोग जानते हैं, समझ पाते हैं कि प्रधानमंत्री। तो भगवान अगर परम है तो लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? मान लीजिए प्रश्न भगवान ने किया तो उद्धव कहते हैं क्योंकि शुद्धता नहीं है। लोगों के जीवन में भगवान को समझना, भगवान को सर्वत्र देखना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों का जीवन बड़ा अपवित्र है। उद्धव कहते हैं पवित्रता नहीं है जीवन में। जीवन की पवित्रता क्या है? कैसे जीवन अपवित्र हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज को स्पर्श करते हैं, जैसे मल को स्पर्श किया जाता है तो माना जाता है कि ये बड़ा अपवित्र हो गया, स्नान करना होता है। पहले के समय में तो अगर रास्ते में चलते हुए भी कहीं कुछ हो जाता था, स्पर्श हो जाता था, मल को लोग वापस जाकर स्नान करते थे। आजकल लोग इतना बॉदर नहीं करते हैं। तो मल को स्पर्श हुआ तो स्नान करना, मतलब अपवित्रता कहां से आई, किसी चीज को स्पर्श करने से। और जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो वो इस भौतिक जगत के जो गुण हैं या भौतिक जगत के गुणों के आधार पर जो भाव प्रकट होते हैं या जो अलग अलग इस भौतिक जगत के गुण प्रकट होते हैं उनको स्पर्श करते हैं तो अपवित्रता आती। और जब भक्ति में लगते हैं सगुणान समति तैत्यान, तो गुणों से परे जाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए पवित्रता आती। तो उद्धव जी कहते हैं कि अपवित्र व्यक्ति है, अपवित्रता क्या है, हृदय में वासनाएं हैं। व्यक्ति चाहे कितना ही नहा ले, बाहरी दृष्टि से साफ सफाई करने से हृदय की अपवित्रता नहीं जाती। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें गंदे रहना चाहिए, इसका अर्थ है कि हमें दोनों अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं, रात्रि में सोते हैं, तो अपवित्र हो जाते हैं, तमोगुण का प्रभाव हो जाता है। इसीलिए सुबह उठकर स्नान करना चाहिए ताकि शरीर स्वच्छ हो, और फिर तुरंत भगवान के नाम का जप करना चाहिए जिससे मन पवित्र हो। तो उद्धव जी कहते हैं अपवित्रता है, तो एक अपवित्रता है वासनाओं की, हमारे अंदर वासनाएं हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कब वृंदावन को देखेंगे, कब वृंदावन जाएंगे समझ पाएंगे, विषय छाड़ी कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हे रब श्री वृंदावन। तो उनकी प्रार्थना ये कि कब होगा कि जो विषय भावना हृदय से जाएगी, शुद्ध होगा मन। तो जब तक विषय है हृदय में, भौतिक विषय, मन अशुद्ध है। और वही मन जब विषय विग्रह में लग जाता है, श्री कृष्ण को विषय विग्रह कहा गया, तो वही मन जब विषय विग्रह में लग जाता है तो शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हृदय की अशुद्धता है तब तक हम वृंदावन देख नहीं सकते, भगवान को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। इसको कहा गया है क्योंकि विषय छाड़ी कबे शुद्ध हबे मन, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा कबे हम हे रबो श्री वृंदावन। तो ये हमारे लिए आवश्यकता है। तो हृदय की अशुद्धता अपवित्रता क्या है, वासनाओं को होना। हृदय की अपवित्रता है भगवान के प्रति ज्ञान को ना होना। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के हृदय में वासना नहीं है तो वो बड़ा पवित्र व्यक्ति, उसको भगवान का ज्ञान होना चाहिए। सो भगवान को समझने के लिए वो योग्यता है अपवित्रता, लेकिन वो पूर्णता नहीं है। पवित्रता, क्षमा कीजिए, पवित्रता योग्यता है भगवान को जानने के लिए, लेकिन वो पवित्रता पूर्णता नहीं है कि बस पवित्र हो गए बहुत अच्छा है, नहीं आगे बढ़ना है। सो वासनाओं को निकालना, दोषों को निकालना हृदय से, ये भक्ति का मार्ग। हमारे हृदय में दोष बने रहते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग भक्ति करते हैं, सही पथ पर है, सही उद्देश्य है, सही आचार्य मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी भावना सही नहीं, स्वभाव नहीं बदल रहे, और इसीलिए अपवित्रता बनी हुई। सुंदर जी कहते हैं इसीलिए भगवान को वो समझ नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि अपवित्र हैं। और आप तो परमात्मा हैं, हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है, और आप सबको देख सकते हैं, कोई आपको नहीं देख सकता, छुपे हुए हैं आप। परमात्मा के रूप में भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो कहते हैं कि आप छुपे हुए हैं। किससे छुपे हुए हैं, क्यों छुपे हुए हैं, भगवान किन के लिए अदृश्य हो जाते हैं, जो भक्त नहीं। तो भगवान भक्तों के लिए तो बहुत सरलता से दृश्य है, लेकिन अभक्तों के लिए वो अदृश्य हो जाते हैं, छुपे हुए हैं भगवान। क्यों छुपे हुए हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उद्धव जी कह रहे हैं कि आप छुपे हुए हैं, क्यों छुपे हैं भगवान? क्या आवश्यकता है? क्या भगवान को डर लगता है? छुपता तो वो व्यक्ति है जो डरता है। भगवान क्यों छुप जाते हैं भक्तों से, अभक्तों से? भक्तों के सामने आते हैं। सो भगवान उन अभक्तों के सामने छुपे हुए हैं। कारण ये नहीं है कि भगवान ने अपने आप को छुपा लिया है, कारण ये है कि उन लोगों ने अपने आंखों पर आवरण डाल लिया। कुंती महारानी वर्णन करती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमाव्ययम्। माया जवनिका छन्नम, माया का पर्दा पड़ा है तो भगवान ने छुपाया नहीं है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के लिए छुपे हुए। क्यों छुपे हैं? क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके सामने आते भी हैं तो वो केवल आपका भोग करना चाहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम भक्ति में जब आए तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण का भोग करना चाहिए या कृष्ण की भोग्य वस्तु बनना चाहिए? सो जब हम भक्ति में आते हैं या जब कोई सही भाव में भक्ति में नहीं है, वो कृष्ण का भोग करना चाहते हैं, मतलब कृष्ण को अपनी इंद्रिय तृप्ति का मार्ग बनाना चाहते हैं। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, ये प्राप्त हो जाए। तो भगवान से कुछ भी भौतिक मांगना मतलब भगवान का भोग करने के समान, कि हम भगवान का भोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये प्रदान करेंगे। जय श्री श्री गौर नटराज दया, ये हमारे लिए ये प्रदान करेंगे, तो ये भगवान का भोग करना है। कृष्ण का भोग करना बंद कीजिए, कृष्ण की भोग्य वस्तु बनिए, ये भक्ति का मार्ग है। और यही हमारा संघर्ष है, हम सब संघर्ष यही कर रहे हैं। क्या संघर्ष कर रहे हैं हम? कृष्ण भक्ति में आने के बाद हम कृष्ण का भोग करना बंद करके कृष्ण की भोग्य वस्तु बनने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक हम वो नहीं बनते हैं, हमें भक्ति में भी सही आनंद प्राप्त नहीं होता। जितने लोग भक्ति में दुखी हैं, कारण यही है कि कृष्ण का भोग करना चाहते हैं। जो कृष्ण के लिए भोग्य वस्तु बन गया उसको दुख क्या है? कृष्ण जैसे भी मेरा भोग करें, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुहार, जैसे चाहो आप भोग कर लो मेरा। लेकिन जब हम कृष्ण को भोग्य वस्तु मानते हैं, कृष्ण का भोग करना चाहते हैं, तो फिर हमारे भक्ति के जीवन में भी कभी भी आनंद नहीं आता। सो भक्ति में आनंद चाहिए, कृष्ण का भोग करना बंद कीजिए। भक्ति में आनंद चाहिए, कृष्ण की भोग्य वस्तु बनिए, ये भक्ति का आनंद है। अपने आप को कृष्ण को अर्पण करना, ये भक्ति है। तो इसीलिए जब तक हम कृष्ण को अपने लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, सदैव दुखी रहते हैं। और ऐसे लोग कभी कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो आगे यहां पर वर्णन किया है कि कृपया आप वो प्रश्न करते मुझे समझाइए, आप हमें बताइए कि कैसे आपकी अलग अलग शक्तियां हैं, आपके अलग अलग प्राकट्य हैं, ऐश्वर्य हैं, कृपया मुझे बताइए, मैं आपको प्रणाम करता हूं, उद्धव प्रणाम करते। तो भगवान ने जब ये सुना तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने उद्धव से कहा, भगवान प्रसन्न क्यों हो गए? उद्धव भी मित्र है और अर्जुन भी मित्र है, और उद्धव अर्जुन ने भी वही प्रश्न किया और उद्धव भी वही प्रश्न कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो गए, मेरे सारे मित्र एक जैसे। तो उन्होंने उद्धव से कहा कि यही प्रश्न अर्जुन ने किया था जो आप अभी कर रहे हो, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली में यही प्रश्न अर्जुन ने किया था। और थोड़ा सा उन्होंने अर्जुन के विषय में कहा कि अर्जुन भ्रमित हो गया था कि मुझे, मैं कैसे अपने अपने ही लोगों को मारूं, अर्जुन के मन में ये भ्रम आ गया था। और फिर उस भ्रम में उसने युद्ध ना करने का निश्चय किया था, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उस समय मैंने ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो तो भगवान उस उद्धव को वो बता रहे हैं। तो देखिए हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि भगवान ने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो मन में आता है कि यही 700 श्लोक थे या कुछ और था। भगवान ने जब ज्ञान दिया तो यही 700 थे, तो फिर उसमें तो कौंतेय धनंजय ये सब आ रहा है, तो फिर विवस्वान को उन्होंने कैसे दिया यही ज्ञान? ज्ञान वही था, सिद्धांत वही थे, जैसे यहां भी उद्धव को वही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन देने में जो ज्ञान वो दे रहे हैं ऐसा नहीं कि वही 700 श्लोक उन्होंने सीधे दे दिए कि ये लो ज्ञान। तो सिद्धांत वही है, प्रस्तुतिकरण अलग है। तो वही उन्होंने जब विवस्वान को दिया होगा तब स्वाभाविक है उन्होंने कहा नहीं होगा कौंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति, वो तो कौंतेय था नहीं विवस्वान। तो शब्द बदले होंगे, सिद्धांत बदला नहीं। यहां भी शब्द बदले हैं, सिद्धांत बदला नहीं। तो फिर भगवान ने कहा यही प्रश्न किया था अर्जुन ने और मैंने उसको यही ज्ञान दिया था, क्योंकि उसकी चेतना उस समय भौतिक हो गई थी, वो शोक में आ गया था। भौतिक चेतना क्या है? भौतिक चेतना है मैं करता हूं, मैं मारने वाला हूं, अर्जुन सोच रहा था ये मेरे लोग हैं, ये भौतिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना क्या है? कृष्ण करने वाले हैं, ये सारे कृष्ण के अंश हैं, मैं एक निमित्त मात्र हूं, ये आध्यात्मिक चेतना। तो जहां हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, जहां हम अपने आप को मारने वाला या बचाने वाला मानते हैं, तो वो भौतिक चेतना है। जहां हम कृष्ण को करने वाला मानते हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानी, सारा कुछ प्रकृति करती है, लेकिन प्रकृति करती किसकी अध्यक्षता में है? कृष्ण की। इसीलिए करने वाले कौन है? कृष्ण। तो जब हम इस बात को समझते हैं ये आध्यात्मिक चेतना, जब इसको नहीं समझते वो भौतिक चेतना, मैं ही करता हूं, मैं रक्षा कर सकता हूं, मैं नहीं मारूंगा, ये भौतिक चेतना। तो अर्जुन भौतिक चेतना में आ गया था और इसीलिए भगवान को भगवद गीता कहनी पड़ी। तो अब भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो 9वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अब बहुत सारे ऐश्वर्यों को कहा, अब हम लोग उसमें विस्तार पे तो नहीं जा सकते, एक एक का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं कर सकते, समय कम है। लेकिन भगवान ने बहुत से, जैसे हमने कहा करीब 100 ऐश्वर्यों को उन्होंने कहा, जिसमें बहुत सारी चीज वही है जो भगवद गीता में उन्होंने कही और कुछ थोड़ी बहुत भिन्न भी हैं, लेकिन वही ज्ञान वही है कि कैसे भगवान सब चीजों में हैं, वेदों में हैं, वेदों में वो क्या हैं, सभी मंत्रों में वो ओंकार हैं, ये वर्णन उन्होंने भगवद गीता में भी किया हुआ है। अक्षरों में अ हैं और फिर जो मंत्र हैं उनमें गायत्री मंत्र हैं, ये सारे वसुओं में अग्नि हैं, रुद्रों में इत्यादि, ये सारे वर्णन जो उन्होंने किए अलग अलग, उसमें कुछ यहाँ पर अलग भी किए हैं, जैसे ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ, तो ऐसे भगवान ने कुछ ऐसे वर्णन यहाँ भी किए हैं। तो ये वर्णन वो पूरे करे, बहुत सारे उन्होंने वर्णन किए भगवान ने कि किस तरह गंधर्वों का वर्णन किया, अप्सराओं का वर्णन किया, पर्वतों का वर्णन किया, नदियों का वर्णन किया, दैत्यों का वर्णन किया, भक्तों का वर्णन किया, बहुत सारे वर्णन उन्होंने किए हैं जल का इत्यादि, और अर्जुन का भी वर्णन किया, जैसे उधर वहां पर भी वर्णन किया था भगवान ने, वैसे वर्णन करके फिर भगवान अब ये सारे ऐश्वर्यों को जब उन्होंने वर्णन कर दिया, ऐश्वर्य को वर्णन करने का अर्थ क्या था? भगवान ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ऐश्वर्यों का वर्णन किया इसमें। तो किस लिए? जब हम ये सब देखते हैं तो ये ऐश्वर्य हमें कृष्ण, ये जो वर्णन किया गया है कि मान लीजिए आप पर्वतों को देखें, आप पेड़ों को देखें, आप जल को देखें, आप धातु को देखें, आप अस्त्र शस्त्रों को देखें, तो ये सबको देखें तो आपको भगवान का स्मरण आना चाहिए। ये विभूतियां क्यों दी गई हैं, ऐश्वर्य क्यों भगवान बता रहे हैं? कोई अहंकार वश नहीं, ये एक मार्ग दे रहे हैं जिससे हम भगवान को जान सके, ये एक मार्ग दे रहे हैं जिससे हम हर जगह भगवान को देख सके। तो ये बहुत अच्छी चेतना है। जब हमारा ध्यान किसी भौतिक वस्तु पर ज्यादा जाए तो ये हमें मदद करते हैं हमारी चेतना को वहां से हटाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सुंदर वस्तु पर हमारा ध्यान जा रहा है तो तुरंत हमारे मन में आना चाहिए कि ये सुंदरता तो भगवान का अंश मात्र है, भगवान कितने सुंदर होंगे, तुरंत हट जाएगा। हम लोग बाहर जा रहे हैं, कोई पेड़ दिखाई दे गया, हमें देखना जानना चाहिए भगवान, भगवान का प्राकट्य। जल पी रहे हैं, भगवान का प्राकट्य। सूर्य देखा, भगवान का प्राकट्य। सो ऐसे हमारी चेतना को कृष्णमय रखने के लिए, कृष्ण भावना भावित बनाए रखने के लिए ये ऐश्वर्य बहुत मदद करते हैं। जो भी हम नाम सुने, जिस चीज को देखें, भगवान तो इतना कहते हैं कि अगर आप कुशा घास को देखते हो तो वो मैं घास हूं, मैं कुशा हूं। तो मतलब आप घास भी देख रहे हो तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और भक्तों की जब बात करते हैं तो कहते हैं भक्तों में मैं तुम हूं, उद्धव तुम्हारे हूं, भक्तों में मैं उद्धव हूं। मतलब उद्धव को उन्होंने श्रेष्ठ माना है यहाँ पर भक्तों। तो हनुमान जी का वर्णन नहीं किया, हनुमान जी का भी किया, किम पुरुषों में मैं हनुमान, वो भी वर्णन किया। सो ऐसे भगवान ने कई वर्णन किए और उसके बाद अब भगवान ये बतला रहे हैं कि जो कुछ भी है इस जगत में वो मैं ही, आपकी इंद्रियां हैं या फिर इस जगत के जो अलग अलग अव्यय हैं, जो अलग अलग तत्व हैं, वो सब मैं ही हूं। भगवान इसका वर्णन करते हैं, या कहना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि जीव का आधार मैं हूं। तो इस तरह से भगवान वर्णन करने के बाद अंत में कहते हैं कि एक समय ऐसा आ सकता है कि जो इस पृथ्वी पर जितने भी अणु हैं, एटम्स हैं, उनको गिना जा सकता है, लेकिन मेरे ऐश्वर्यों को गिनना संभव नहीं। भगवान कहते हो सकता है मैं गिन लूं मेरे ये जितने भी अणु हैं इत्यादि, लेकिन मेरे ऐश्वर्यों को गिनना मेरे लिए भी संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भगवान गिनना शुरू करेंगे तब तक उनके ऐश्वर्य और बढ़ जाएंगे। जैसे इस जगत में सही समय बताना संभव नहीं है, कोई नहीं बता सकता इस जगत में सही समय, क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कि इस समय 8:10 और 15 सेकंड हुए हैं, जब तक हमने ये कहा तब तक 17 सेकंड हो जाता है। तो इसलिए कोई सही समय बता ही नहीं सकता इस जगत में। तो इसी तरह भगवान कहते मैं अपने ऐश्वर्य को कैसे बताऊं, क्योंकि जब तक वो बताना शुरू करते तब तक वो कई गुना और बढ़ जाता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संभव ही नहीं है। लेकिन कैसे जानो? तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि किस में मेरे ऐश्वर्य को देखना चाहिए तुम्हें। तो भगवान कहते हैं जो भी तुम बहुत बल को देखो, जहां तुम्हें बहुत बल दिखाई दे रहा है, जान लो मेरा ऐश्वर्य। तुम्हें बहुत सुंदरता कहीं दिखाई दे रही है, जान लो मेरा ऐश्वर्य। तुम्हें प्रसिद्धि दिखाई दे रही है, जान लो मेरा ऐश्वर्य। तुम्हें नम्रता दिखाई दे रही है, जान लो मेरा ऐश्वर्य है। तुम्हें वैराग्य दिखाई दे रहा है, जान लो मेरा ऐश्वर्य है। तुम्हें मानसिक स्तर पर कोई आनंद दिखाई दे रहा है, जान लो मेरा ऐश्वर्य है। तुम्हें किसी चीज में भाग्य दिखाई दे रहा है, जान लो वो मेरा ऐश्वर्य है। तुम किसी चीज को सहन कर पा रहे हो, जान लो मेरा ऐश्वर्य। तो देखिए भगवान ने कितने विस्तार से इन चीजों को कहा। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं अगर तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी मेरा ऐश्वर्य। अर्थात अगर हम इन चीजों को बड़े अच्छी तरह से समझ ले, इसे एक भगवान के वाक्य को ही समझ लें, तो हमें कभी अहंकार नहीं होगा। हमें किस चीज का अहंकार हो जाता है? सुंदरता का अहंकार हो जाता है, हमें वैराग्य का अहंकार हो जाता है, हमें नम्रता का भी अहंकार हो जाता है, मैं कितना नम्र हूं। हमें बहुत सी चीजों का, हम किसी चीज को सहन करते हैं तो सहनशीलता का अहंकार हो जाता है, प्रसिद्ध होते हैं तो प्रसिद्धि का अहंकार हो जाता है। ज्ञान है अगर आध्यात्मिक ज्ञान तो भी अहंकार हो जाता है, जबकि प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ है झुक जाना। प्रभुपाद उदाहरण देते थे पेड़ का, जो वृक्ष है जिसमें फल नहीं लगे सीधा खड़ा है, लेकिन जब फल लगते हैं तो झुक जाता है। तो जब तक किसी व्यक्ति में ज्ञान नहीं है वो अहंकारी है, जैसे ज्ञान होगा नम्र होगा। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज्ञान आने के बाद बड़ा अहंकार आ जाता है। अरे पता नहीं, पूरा भागवतम जानता हूं मैं, पूरे चैतन्य चरितामृत जानता हूं, ये जानता हूं। तो ये अगर हमें पता चले कि ये भी भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान के ऐश्वर्य का अंश हमें मिल रहा, सुंदरता अंश है, सहनशीलता अंश है, प्रसिद्धि अंश है, पूर्ण तो भगवान के पास है। तो इससे कभी हमें अहंकार नहीं होगा, क्योंकि देखिए नम्रता ये आत्म संयम संयम की जड़ है, इसको ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस इज द रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयमी बनना चाहते हैं तो आत्म संयमी बनने का जड़ मूल नम्रता है। और नम्रता कैसे आएगी? जब भगवान को सब जगह में देखेंगे कि सब कुछ भगवान से आ रहा, मेरा है क्या, किस चीज का अहंकार। तो इसलिए नम्रता को हमें लाना है। तो फिर भगवान आगे कहते हैं, उद्धव को अब आदेश देते हैं कि उद्धव अपनी वाचा को नियंत्रित करो, अपने मन को नियंत्रित करो, श्वासों को नियंत्रित करो। तो ये भगवान कहते हैं, और अगर ऐसा करोगे तो कभी तुम्हारा पतन नहीं होगा। उद्धव को आदेश दे, खैर उद्धव के द्वारा हम सबको आदेश दे रहे। सो वाचा, बोलने की शक्ति को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो और श्वासों को नियंत्रित करो। और फिर उन्होंने कहा कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो, कभी पतन नहीं होगा। सो अगर हमें ये विश्वास करना है, हमें ये किसी तरह जानना है कि कैसे भक्ति में हमारा पतन ना हो, भगवान ने यह आदेश दे दिए, इस आदेश का पालन कीजिए। बोलने की शक्ति को कंट्रोल कीजिए। इस जगत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल बोलने पर हो रही है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई नेता ने कुछ कह दिया, हंगामा हो गया पूरा, है ना। आजकल तो ऐसा होता है कि एक देश का कोई नेता भी नहीं, कोई रूलिंग पार्टी का व्यक्ति कुछ एक स्टेटमेंट दे देता है, दुनिया भर में हंगामा हो जाता है, केवल एक शब्द, एक लाइन बोलने से। तो ये जो शब्द है ये बहुत शक्तिशाली है। किस तरह से शक्तिशाली है ये जो शब्द है, ये इतने शक्तिशाली हैं कि अगर इन शब्दों से किसी का गुणगान किया जाए तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी, अगर बहुत निराशा इत्यादि में है, तो ऊपर आ सकता। और वही ये शब्दों का गलत इस्तेमाल किया जाए, कोई अच्छे भले व्यक्ति को आपने कुछ उसका अपमान इत्यादि कर दिया, तो वो निराशा में जा सकता है। शब्दों में बहुत शक्ति है। तो इसीलिए अगर हम शब्दों का उपयोग बिना ध्यान से करें, केयरलेसली अगर करते हैं, तो ये किसी के हृदय को तोड़ सकता है, या कहना चाहिए संबंध खराब कर सकता है। तो शब्दों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तपस्या कीजिए वाणी की। बहुत कठिन होता है, कोई अगर हमें कुछ बोले तुरंत हम बोल देते हैं, या किसी को हम कुछ देखते तुरंत बोल देते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं उसको नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है ये हम भूल जाते हैं। जैसे बिजली है, तो ये जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत पावरफुल है, हम भूल जाते हैं। जैसे मान कब याद आता है, अचानक लाइट चली जाए रात के समय, सारा अंधेरा हो जाता है, सब पंखे बंद हो जाते हैं, और बड़ी तेज गर्मी हो, मई का महीना हो और चली जाए लाइट, तब इसकी शक्ति का अनुभव होता है। क्या है, भागते हैं इधर उधर, कुछ करते हैं, नींद नहीं आती, रात को घूमते हैं इधर उधर, उसकी शक्ति का पता चलता है। तो ये दोनों तरह से कार्य करती है, अच्छा बुरा। तो अच्छा क्या कार्य करती है, हमें कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकती है उसकी शक्ति। बुरा क्या है, गलती से हाथ लग जाए आदमी मर सकता। तो इतनी शक्ति है इसमें, हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इतना ध्यान नहीं रहता कि इसके अंदर इतनी शक्ति। इसी तरह ये जो शब्द हैं, इसकी भी बड़ी शक्ति है, दोनों सकारात्मक नकारात्मक। आदमी को मार भी सकती है और आदमी को बहुत ऊंचा ले जा भी सकती है। इसीलिए शब्दों का भगवान कह रहे, तो सबसे अच्छा नियंत्रण शब्दों का क्या है, भगवान के बारे में बोलूंगा। कृष्ण कथा का प्रचारक बनना, लेकिन कृष्ण कथा का प्रचारक केवल किस लिए है? कुछ पाने के लिए नहीं, प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं। कभी कभी हम लोग भागवतम कथा को या भागवत कथा को भी या तो अपने पेट भरने का एक जरिया बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं कि हम लोग कथा करेंगे, क्या होगा, कथावाचक बनेंगे और फिर जीवन अच्छा चलेगा। या फिर कभी कभी हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भागवत कथा कहते हैं, कभी धन कमाने के लिए, कभी प्रसिद्धि कमाने के लिए। इसलिए जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं तब बड़ा अच्छा प्रवचन निकलता है, जब चार लोग बैठे होते हैं तो लगता है कि ठीक है, कोई ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि इच्छा क्या है, प्रसिद्धि की। सो भागवत या कृष्ण कथा कहनी चाहिए अपने शुद्धिकरण के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, न धन के लिए, न किसी और भौतिक कार्य के लिए। कथा होनी चाहिए केवल अपने शुद्धिकरण के लिए। और अगर हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, जैसे भागवत में ही कहा गया है, बोलने वाला, प्रश्न करने वाला और सुनने वाले सब शुद्ध हो जाते हैं, ये भागवत कथा। अगर शुद्ध हृदय से, शुद्ध उद्देश्य से भागवत कही जाए, कृष्ण कथा कही जाए, तो ये हमारे वाचा को नियंत्रण करना है। और मन को, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को भी भगवान में लगाना चाहिए, सदैव चिंतन। अभी हमने दर्शन किए भगवान के, चिंतन करते रहिए, क्या पहना है भगवान ने, कैसे खड़े थे, कैसे मुस्कुरा रहे थे, हार कैसे थे, फूलों का हार कैसे था, ये सब चिंतन करना चाहिए भगवान का। तो इसलिए मन भगवान में लगे, जब तक मन भगवान में नहीं लगता है अशुद्ध रहता। और फिर इंद्रियों को वश में करना ये आवश्यक है। तो इसको भगवान ने उद्धव से कहा कि अगर इनको नियंत्रित करोगे तो कभी पतन नहीं होगा, और अगर नियंत्रित नहीं किया तो, भगवान एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नियंत्रित नहीं किया तो फिर क्या होगा, कुछ चीजों का कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान एक उदाहरण देते हैं कि जब मटका बनता है तो मान लीजिए वो सूखा नहीं है मटका, या उसको अभी तक पकाया नहीं गया है, तपाया नहीं गया है, बस बना दिया गया, उसमें पानी भरेंगे तो क्या होगा, मटका बन गया है लेकिन अभी उसको अग्नि में जलाया नहीं है, तपाया नहीं है, तो क्या होगा, पानी डालेंगे तो तब निकल जाएगा पानी। तो भगवान यही उदाहरण दे रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, मटका बना रहे हो, लेकिन उसको तपाया नहीं भक्ति की अग्नि में या इन नियंत्रण की अग्नि में, तब क्या होगा। तो कहते हैं कि अगर आपने कोई आध्यात्मिक प्रतिज्ञाएं ली हैं, व्रत लिए हैं, जैसे हम लोग बहुत व्रत लेते हैं फिर भूल भी जाते हैं, हमें भी याद नहीं रहता कितने व्रत लिए हैं, हम ये करेंगे, हम एकदम कभी कुछ सुनते हैं तो अचानक मन में आता है आपसे 64 माला जप करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 दिन तो कर भी लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं, बहुत सेवाएं हैं, होगा नहीं, राइट, भक्ति शास्त्री करेंगे, क्या हो गया, अरे नहीं बहुत सेवाएं हैं, होगा नहीं। तो ये वाव, जो स्पिरिचुअल वाव्स हम लोग लेते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर जो हम प्रतिज्ञाएं या व्रत लेते हैं, भगवान कह रहे कभी पूरे नहीं होंगे अगर मन, इंद्रियां और वाचा नियंत्रण में नहीं। तो इसीलिए भगवान पहली चीज कहते कि आध्यात्मिक आपकी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होंगी। फिर आप बहुत तपस्या कुछ कर रहे हो तो उसका भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई दान दे रहे हो उसका भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये इस तरह है कि मटके को अग्नि में तपाया नहीं, जो है सारा निकल जाएगा, लीकेज हो जाएगा। सो इसलिए अगर हमें अपनी आध्यात्मिक व्रतों को बनाए रखना है तो आत्मसंयमी बनना चाहिए। अगर हमें दान इत्यादि जो भी हम लोग कर रहे हैं, दान मतलब क्या है, कोई ब्रह्मचारी इत्यादि सोच सकते हैं, भक्त सोच सकते हैं, हमें तो दान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, भगवान के भक्ति का दान, ज्ञान का दान हम करते ही हैं। तो वो दान का भी कोई लाभ नहीं होगा। तो ये भगवान उद्धव को बताते हैं और फिर अंत में कहते हैं, अच्छा ये जान लो कि नियंत्रित कैसे करना है। तो देखिए, पहले भगवान ने बताया कि नियंत्रित करने के क्या लाभ हैं, नियंत्रित करना चाहिए इन चीजों को, नहीं करोगे तो क्या होगा। और अब भगवान अंत में बता रहे हैं कि कैसे नियंत्रण करना है। तो भगवान दो चीजें कहते हैं नियंत्रण करने के लिए, या नियंत्रण के कारण किस चीज से नियंत्रण हो जाएगा। पहला समर्पण और दूसरा प्रेममय भक्ति। अगर हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, अगर हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, हमें भगवान को समर्पण करना होगा। क्योंकि जो भगवान को समर्पण कर देते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्तिते, तो वो बड़ी सरलता से ये जो माया के प्रभाव है उससे दूर जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि अगर नियंत्रण करना है तो समर्पण करो, और समर्पण करके क्या करो, प्रेममय भक्ति। प्रेममय भक्ति का अर्थ क्या है? ऐसा पथ, ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा, ऐसी आराधना जिससे कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न, उसे प्रेममय भक्ति कहते हैं। तो इसलिए ऐसी भक्ति हमें करने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम कृष्ण को सर्वत्र देखने की क्षमता प्राप्त कर सकें, कृष्ण को जानने की क्षमता प्राप्त कर सकें, और अपने जीवन में कृष्ण को उतारने की, कृष्ण को लाने की क्षमता प्राप्त कर सकें, और कृष्ण के लिए एक बहुत सुंदर हम एक अर्प भेंट अपने जीवन की अर्पण कर सकें। ये इस अध्याय का सार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, ब्रह्म साक्षात्कार क्या होता है? ब्रह्म साक्षात्कार, जब हम साक्षात्कार की बात करते हैं तो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। सो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है भगवान को जानने का प्रयास करना, अपने आप को जानना, भगवान को जानना, भगवान से अपने संबंध को जानना और उनकी सेवा में लगना, साक्षात्कार। तो भगवान को जानने में अध्यात्मवादी जो होते हैं वो तीन प्रकार के साक्षात्कारों की कामना करते हैं या उसको प्राप्त करते हैं जो दिया गया है शास्त्र। तो पहला है ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान का निराकार रूप है, भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है, उसको अनुभव करना, उसके उसमें प्रवेश करके वहां का जो वातावरण है उसको अनुभव करना, ये ब्रह्म साक्षात्कार है। जहां भगवान के धाम, भगवान की लीलाओं, भगवान के गुण वैशिष्ट्य का अभी तक हमें अनुभव या ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये ज्ञान हो गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो जगत है ये बहुत कष्टदायक है, हमें नहीं चाहिए। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे जाना, भगवान के ब्रह्म रूप को अर्थात निराकार रूप को ही परम मानना और फिर उसका साक्षात्कार या उसको प्राप्त करना, ये ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है सरल भाषा। फिर जब कोई आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा का करते हैं, और फिर जब आगे भगवान की ओर जाते हैं तो पूर्ण साक्षात्कार। ठीक है, उमा माता जी कोई प्रश्न है आपका?
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सबको, प्रणाम जी। गुरु जी हम, अभी हमने आपने बताया कि एक भक्त के अंदर ऐसे गुण होते, वो कभी कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, अहंकार नहीं होता उनमें, और कभी वो नाराज क्रोध क्रोध नहीं करते। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि भक्तों के सामने ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं कि वो बहुत क्रोध करते हैं और उन्हें बहुत अहंकार होता है, तो फिर वो उस स्थिति में क्या करें, भक्त उनका कैसे सामना करें?
अच्छा, भक्तों के सामने ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो बहुत क्रोध करे, अहंकार करे, तो भक्तों को कैसे सामना करना चाहिए?
जी बिल्कुल,
ये प्रश्न। थैंक यू।
हरे कृष्ण।
सो भक्तों के सामने अगर कोई अहंकारी व्यक्ति आ जाए, अपमान करे, कैसे करना चाहिए? सहन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? अच्छा, तो ये होगा कि हम इस स्थिति को अपने शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया माने। एक बार हमारे संस्था के एक सन्यासी से प्रश्न किया गया था, तो उनसे कहा कि महाराज, कई बार ऐसा होता है लोग अपमान कर देते हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, आपस में कोई अपमान कर देता है, कैसे सहन कर? तो उन्होंने कहा कि इसको योजना मानो भगवान के शुद्धिकरण की। तो उन्होंने कहा ठीक है, भक्त तो ठीक है, बाहर का कोई व्यक्ति आकर कर दे अपमान, तो उसको कैसे समझें? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था, भगवान किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको शुद्ध करने के लिए, जरूरी नहीं है कि भक्तों को करें। सो उसको भी शुद्धिकरण का मार्ग मानना चाहिए। सो सबसे अच्छा तो ये है कि हम उसको अपना शुद्धिकरण का मार्ग माने, जैसे विदुर जी ने किया। दुर्योधन विदुर जी से बहुत छोटा था। विदुर जी तो उसके पिता की उम्र के थे और दुर्योधन ने उनका बहुत अपमान किया। इतना तक कहा कि ये शत्रु का पक्ष का जासूस है, ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, इसको केवल सांसों के साथ छोड़ दो, बाहर निकाल। जय श्री शिवाय। तो ये अपमान उन्होंने कैसे सहा, विदुर जी ने, जो महान भक्त है। तो उनके सामने अहंकारी ये दुर्योधन है, इतना अहंकार कर रहा है, उनको बाहर निकाल रहा है राज्य से, वो राज्य जहां जिसके लिए उन्होंने जीवन दिया, जिसको इतना प्रेम करते थे। पांडवों के साथ सब गलत हो रहा था, लेकिन कभी भी विदुर जी वो छोड़कर नहीं गए। ये रखा आपकी मिनिस्ट्रीशिप मुझे नहीं चाहिए, वो चाहते थे हस्तिनापुर को अच्छा करना, लेकिन उसी हस्तिनापुर से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। वो भी आरोप लगाकर, ऐसे मतलब दंड दिया गया जैसे। तो उन्होंने कैसे किया, वहां पर वर्णन है कि विदुर जी ने भगवान की बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति दोनों को कार्य करते देखा। तो विदुर जी ने बहिरंगा शक्ति का क्या देखा प्रभाव, दुर्योधन इतना अहंकारी हो रहा है, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहा है, किन के ऊपर, विदुर जी के ऊपर। और अंतरंगा शक्ति का कार्य क्या देखा, उन्होंने देखा भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि बहुत समय से पूरा टाइम मैनेजमेंट करते रहे, अभी चलो थोड़ा तीर्थ यात्रा कर कर आते हैं, फिर वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सो इसी तरह हमें देखना है दोनों, कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, अहंकार कर रहा है हमारे सामने, तो व्यक्ति प्रभाव में है। जैसे हम लोग बीमार हैं वैसे वो भी बीमार है, और बीमार व्यक्ति तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो उसको सहन करना चाहिए। क्योंकि जब हम विरोध करते हैं तो हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं। विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हैं, रंभा आई उनको प्रभावित करने के लिए, उनके हृदय में काम वासना जागृत करने के लिए। काम वासना जागृत नहीं हुई विश्वामित्र मुनि के हृदय में, लेकिन क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध कर दिया रंभा को, तुम पत्थर बन जाओ, तुम मेरी तपस्या भंग करने आई हो, पत्थर बन जाओ। वो पत्थर बन गई, लेकिन उसको पत्थर बनाने में विश्वामित्र मुनि ने जो तपस्या की थी उसका बल चला गया। तो जब हम विरोध करते हैं तो हम अपनी तपस्या, हम अपनी भक्ति के बल को समाप्त कर रहे हैं। इसीलिए दूसरा गलत कर रहा है, हमें गलत ना करें, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर भी रहा है तो सबसे अच्छा है ध्यान ना दिया जाए, सहन किया जाए, देखा जाए कि कैसे भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं। और अगर ये सब संभव नहीं है तो कम से कम हमें उस स्थान छोड़ देना चाहिए, विरोध ना करें, बहुत ज्यादा हम भी उस स्थिति में ना आए, हमें उस स्थान छोड़ देना चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों को, अपनी भक्ति को नाश ना करें। ठीक है, यहाँ पर और एक प्रश्न है। अच्छा, तो वाणी तो संयम हो जाता है परंतु मन पर नहीं हो पाता। मन बहुत कुछ बोलता रहता है तो मन पर कैसे नियंत्रण करें। हाँ, मन जल्दी नियंत्रण में नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु तो मन ही है। दरअसल जब तक हम पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं तब तक हमें किसी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है। इधर बैठा हुआ है, रेडी है वो, मन बैठा है शत्रुता करने की, सबसे बड़ा शत्रु तो उसको मित्र बनाना चाहिए। ऐसा होता है कि जब हम कोई शत्रु बहुत शक्तिशाली है, मार नहीं सकते, तो उससे मित्रता कर लेना चाहिए। भगवान ने भी यही कहा था जब समुद्र मंथन की लीला हुई है, देवता सब गए भगवान के पास कि ऐसे कर रहे हैं, अब उनको कैसे मारे। भगवान ने कहा इस समय बहुत शक्तिशाली है, गुरु की कृपा से, भृगु मुनि के वंशजों की कृपा से, तो इसीलिए अभी कुछ मत करो, संधि करो जाकर। भगवान ने भी यही कहा। तो जब कोई शत्रु बहुत शक्तिशाली हो तो हमें संधि कर लेनी चाहिए। मन बहुत शक्तिशाली शत्रु है, संधि कर लीजिए, उसे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। क्या कॉम्प्रोमाइज कीजिए? थोड़ा बहुत धोखा दीजिए, जैसे देवताओं ने दिया था समुद्र मंथन के समय। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह बैठे जब कर रहे हैं और मन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मन कह रहा है नहीं नहीं बहुत हो गया, चलो उठो, ये करेंगे, अब बंद कर दो जपा, बाद में कर लेंगे, वो नहीं रहा, बहुत कुछ होता है। सो मन को कहना चाहिए कि ठीक है एक काम करते हैं, चार माला करने के बाद उठें। और आप ये करके देखिए, मन चार माला तक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा जब आप उसको कह दोगे, लेकिन चार माला के बाद वो बैठने नहीं देगा। तो ऐसे मन को भी थोड़ा थोड़ा हमें धोखा देना सीखना चाहिए। सो मन का नियंत्रण सबसे अच्छा है कि हम जितना हो सके अपनी भक्ति को बढ़ाएं और इस चीज को जानें कि कैसे मन को नियंत्रण किया जा सकता है। मंत्र के द्वारा मन नियंत्रित होता है, मनत्रायते इति मंत्रः। मन को अगर हमें तारना है तो मंत्र का जाप करना चाहिए, सबसे अच्छा है। दूसरा है, हम जिस स्थान में रहते हैं वो स्थान क्या हमारे मन को विचलित करने की बहुत सुविधाएं प्रदान कर रहा है तो फिर उसको बदलना चाहिए। जैसे हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो खाते हैं, ये सब मन पर प्रभाव कर रहा है। ऐसा मत सोचिए कि हमने कोई मैगजीन पढ़ ली इधर उधर की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पड़ता है, थोड़ा सा हमने ऐसे देख लिया, बस वो थोड़ा सा देख लिया मन पर प्रभाव हो गया। सो मन को अच्छा बनाने के लिए उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए। जैसे सरल है, हमारा शरीर है, शरीर में अगर हम उसको अच्छा भोजन देते हैं शरीर अच्छा रहता है। आप सड़ा हुआ भोजन दीजिए उसको, बेकार भोजन दीजिए, 3 दिन में बीमार हो जाए। तो मन को भी अच्छा भोजन दीजिए। देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, इस पे सब नियंत्रण लाइए, मन अपने आप नियंत्रित हो जाए। सो पहली चीज, मंत्र का जाप करें, मनत्रायते इति मंत्र। और दूसरा, स्थितियों को बदलें आसपास की। और फिर तीसरा, बड़ी तीव्रता से भगवान से प्रार्थना करें तो निश्चित मन भी नियंत्रित हो सकता है। और एक प्रश्न है, हमें कृष्ण की भोग्य वस्तु बनना चाहिए और परम दृष्टवा निवर्तते, दोनों को कैसे समझना है? दोनों एक ही हैं। परम दृष्टवा निवर्तते मतलब क्या है? ऊंचे स्वाद को लेना, निचले स्वाद को त्याग देना। तो भगवान की भोग्य वस्तु बनने का अर्थ क्या है? जब तक हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, हम निचले स्वाद को लेने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक जगत की भावना है ये, और भौतिक जगत की भावना निचला स्वाद है। ऊंचा स्वाद कब मिलेगा? जब हम अपनी संवैधानिक स्थिति में आएंगे। जैसे मछली है, मछली को ऊंचा स्वाद कब मिलेगा? जब जल में जाएगी। जब तक वो बाहर रहेगी, चाहे कुछ भी दे दीजिए, उसको आनंद नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारा संवैधानिक स्थिति, जैसे मछली की संवैधानिक स्थिति जल में है, ऐसे ही हमारी संवैधानिक स्थिति भोग्य वस्तु बनने में है, भोग करने में नहीं। और जब हम भोग करते हैं तो ये विरोधाभास होता है और इसीलिए दुख होता है, कष्ट होता है। बहुत सरल है समझने के लिए। हमारा जो स्वभाव है, जब हम उसके विरुद्ध जाते हैं अपने स्वभाव के, तब हम हमेशा दुखी रहते हैं। सो हमारा स्वभाव क्या है? भोग्य वस्तु बनना, उसी में हमारा आनंद है, वही हमारी संवैधानिक स्थिति है, वही ऊंचा स्वाद है। लेकिन जब हम उसको छोड़कर भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं कि हम एंजॉय करेंगे, हम भोग लेंगे, तो हम अपनी संवैधानिक स्थिति से हट गए, और जैसे ही हट गए दुख शुरू हो गए, कष्ट शुरू हो गए। मछली जैसे पानी से बाहर आई दुखी होना शुरू हो गई। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मछली को पानी से बाहर निकालकर भले उसको मारो नहीं, उसको काटो नहीं, उसको बहुत अच्छी सुविधा भी दे दो, मछली सुखी नहीं रहेगी। तो इसी तरह जब तक हम भोग्य वस्तु नहीं बनते हैं कृष्ण की, तब तक हम सुखी नहीं रहते। और इसीलिए इस जगत में हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति सोचे मैं घर चला रहा हूं, लेकिन वो अपने घर वालों की सेवा कर रहा है। कोई सोचता है मैं राष्ट्र चला रहा हूं, राष्ट्र की सेवा कर रहा है। कहीं भी व्यक्ति सेवा तो कर ही रहा है, दुर्भाग्य से पता नहीं है कि सेवा करनी किसकी है असल, और इसीलिए दुख। तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है, एक ही है। ओके, अगला प्रश्न है, कृपया विस्तार से बताइए कि कभी कभी हम कुछ प्रण लेते हैं भक्ति में और हम उसको तोड़ देते हैं, तो कैसे स्थिति को समझना चाहिए या कैसे हम इसको बनाए रख सकते हैं? पहली चीज तो है, हमें ऐसा कोई प्रण नहीं लेना चाहिए जो बहुत अव्यवहारिक हो। एकदम उत्साह आ गया कि हम लोग चार माला करते हैं, एकदम उत्साह कल से 64 माला करेंगे, अव्यवहारिक है। तो क्योंकि आप बनाए नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए पहली चीज है कि जो अगर हमें प्रण लेने हैं तो ऐसे लेने चाहिए जो हो सके, पालन हो। हम 16 माला करते हैं, चलो हमने प्रण ले लिया, 20 माला करेंगे, प्रैक्टिकल है। 24 माला करेंगे, प्रैक्टिकल है। तो ऐसे पहले तो लेना चाहिए, तो हमारे जो प्रण हो वो प्रैक्टिकल। दूसरी चीज, हम बहुत संघर्ष करें, उसको प्रायोरिटी दें। ऐसा नहीं कि हो गया, बोल दिया, खत्म। हमारे मन में सदैव वो चिंतन चलना चाहिए, वो पूरा किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। धीरे धीरे ये स्वाभाविक हो जाता है। देखिए, जैसे जब हम लोगों ने प्रण लिया कि हम लोग शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, अवैध संग नहीं करेंगे, ये प्रण लिया हम लोगों ने, तो शुरुआत में जो लोग बहुत शराब पीते थे, जो बहुत मांस खाते थे, उन लोग के लिए बहुत तकलीफ हुई। लोगों को चाय छोड़ने में तकलीफ हो जाती है, प्रण ले लेते, दीक्षा ले लेते, लेकिन चाय नहीं छूटती है, फायदा क्या फिर? तो चाय छोड़ने में तकलीफ हो रही है, तो क्यों हो रही है? आपने वचन लिया है, आप वचन दे रहे हो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो उस वचन को, तो क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा चिंतन नहीं किया शुरुआत में, कि बस मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, चाहे जो भी हो मुझे। तो पहली चीज हम मना करें, दूसरा पॉजिटिव एंगेजमेंट भी जरूरी है। अगर हम किसी चीज को छोड़ रहे हैं और वो चीज हमें बारंबार हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो हमें अपना मन कहीं और भी लगाने की आवश्यकता। तो पहली चीज, बहुत प्रैक्टिकल वॉज लीजिए। दूसरी चीज, उसको प्रायोरिटी दीजिए जब तक वो स्वाभाविक ना हो जाए। जैसे शुरुआत में हुआ होगा कष्ट, अभी कोई भक्त को कष्ट नहीं होता कि अरे मैं चाय नहीं पी रहा हूं, या मैं प्याज लहसुन नहीं खा रहा हूं, या शराब नहीं पी रहा हूं, कोई कष्ट नहीं, सोचते भी नहीं उस बारे में, उस स्वाभाविक पालन हो रहा है। क्यों हो रहा है? शुरुआत में उसको प्राथमिकता दी। जैसे जब मान लीजिए किसी ने शुरू किया होगा, अच्छा ठीक है कल से हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो जहां जा रहे हैं वहां उनको देख रहे, अरे प्याज लहसुन तो नहीं है इसमें, अरे यहाँ नहीं खाना, यहाँ प्याज लहसुन तो नहीं, प्राथमिकता देते, फिर धीरे धीरे वो स्वाभाविक हो जाता है, लगता नहीं है कि खाना चाहिए। तो ऐसे ही जो भी आप व्रत लें, उसको बहुत गंभीरता से पालन करने का प्रयास करें। ऐसे भक्तों के संग में रहें, कभी आप नहीं पालन कर पा रहे हैं तो भक्तों से आप चर्चा करें, हो सकता है कोई व्रत पालन करने में स्थितियां कुछ ठीक ना हो, तो हमें गाइडेंस लेना चाहिए। और जैसे हमने कहा अंत में, भगवान से प्रार्थना तो करनी चाहिए कि मैं ये ऐसे करना चाहता हूं, आप इसमें सहायता करें। ठीक है, ओके। अगर हम दिन भर भगवान के चित्र देखते और गलती से भी एक दो बार गलत चीज देख लेते हैं तो हमारे मन में गलत चीज ही याद आती है, इससे छुटकारा कैसे पाए। सही है एकदम, कृष्ण का कितना भी स्मरण कर लीजिए, कारण ये है कि हमारा अभी चेतना अभी भी उन चीजों में बहुत रुचि लेती, अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं, संघर्ष करते रहे, यही हमारा संघर्ष है। कोई बात नहीं, अगर आपके मन पर वो हावी हो रहा है लेकिन फिर से कृष्ण का चित्र देखिए, धीरे धीरे मन मन को भी कंडीशनिंग चाहिए तो मन भी कंडीशन हो जाएगा, तो ये संघर्ष कृपया करते रहे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।